सेहत की बातें डॉक्टर से बातें, क्या करें क्या ना करें, रोगों से कैसे बचें, जानने के लिए सुनते रहें अर्पण रेडियो से प्रसारित कार्यक्रम आरोग्य वाणी। आज के आरोग्य वाणी कार्यक्रम में प्रस्तुत है लकवा रोग से जुड़ी हुई विस्तृत जानकारी। जानकारी दे रहे हैं प्रथम हॉस्पिटल बिलासपुर के डॉक्टर रजनीश पांडे। श्रोता, हमने एक दिन अखबार में खबर पढ़ी कि मध्य प्रदेश के नीमच के पास देवी माता का मंदिर है, वहां की बावड़ी में नहाने से लकवा ग्रस्त लोग पूरी तरह से ठीक हो जाते हैं। फिर हमने एक दिन सुना कि हमारे एक परिचित जो अच्छे से पढ़े लिखे समझदार परिवार से ताल्लुक रखते हैं, अपने पक्षाघात से ग्रस्त पिताजी को पास के गांव में वैद्य के पास कबूतर के लहू की मालिश करवाने ले गए हैं, साथ ही कबूतर का मांस भी पकाकर खिला रहे हैं। और फिर हमने एक दिन सुना कि अगर किसी को फालिज गिरा है या लकवा के लक्षण दिखाई दे रहे हैं और उसे 4.5 घंटों के अंदर अगर डॉक्टर के पास पहुंचा दिया गया तो वो पूरी तरह से ठीक हो जाता है। बस हम लकवा की सही जानकारी, वैद्यों की वैधानिकता, डॉक्टरों की कामयाबी, झोला छाप डॉक्टरों के चक्कर में फंसने की कहानी का सच जानने के लिए और इस बीमारी की विस्तृत जानकारी आपको देने के लिए बिलासपुर के लकवा रोग विशेषज्ञ डॉक्टर रजनीश पांडे के पास पहुंच गए। न्यूरोलॉजिस्ट डॉक्टर रजनीश लकवाग्रस्त सैकड़ों उन रोगियों को पूरी तरह स्वस्थ कर चुके हैं जो सही वक्त पर उन तक पहुंच गए। हम उनका स्वागत करते हैं और सबसे पहले उनसे जानते हैं कि आखिर ये लकवा है क्या।
सामान्य भाषा में शरीर का एक अंग, एक हिस्से के बारे में बात की जाती है कि एक हिस्से का कमजोर हो जाना लकवा कहा जाता है। हमारी भाषा में दिमाग के किसी हिस्से में खून का संचार रुकना या खून की नस का फटना, वो स्ट्रोक कहा जाता है। जो स्ट्रोक दिमाग का होता है वो स्ट्रोक सामान्य भाषा में दिल के लिए हार्ट अटैक कहा जाता है।
अर्थात जिस तरह दिल तक खून सही रूप में न पहुंचने पर हार्ट अटैक होता है, उसी तरह दिमाग तक खून सही रूप में न पहुंचने पर ब्रेन स्ट्रोक हो जाता है।
ब्रेन अटैक या ब्रेन स्ट्रोक या लकवा वो क्या होता है, उस पर हम आगे बात करें। लकवा खून का संचार रुकना या खून की नस का फटना, तो एकदम स्पष्ट हो जाता है कि ये दो तरह का हो, या तो खून की नस फटेगी उसके चलते लकवा होगा, या खून का बहाव, खून का संचार रुकेगा उसके चलते लकवा होगा। यहाँ पे एक बात मैं बहुत स्पष्ट करना चाहता हूँ कि ये खून का संचार दिमाग के लिए है, न कि विशेष किसी पर्टिकुलर अंग के लिए। अभी मैं अपनी प्रैक्टिस में बिलासपुर में देख रहा हूँ कि गांव के आने वाले पेशेंट्स, उनका ये कहना रहता है कि उस हाथ में कमजोरी आई तो उन्होंने मालिश करनी शुरू कर दी और उसके बाद ताकत आ गई, या वो किसी पर्टिकुलर डॉक्टर के पास या वैद्य के पास जाते हैं, वो कुछ इंजेक्शन लगाता है हाथ में या पैर में और ताकत आ जाती है। मेडिकल साइंस में ऐसा कहीं भी नहीं है कि लकवा हाथ में या पैर में आए और इंजेक्शन लगाया जाए वो ठीक हो जाए। इंजेक्शन कुछ होते हैं लेकिन वो इंजेक्शन हाथ या पैर में काम नहीं करते, वो इंजेक्शन दिमाग की नसों में काम करते हैं जिनमें रक्त का संचार होता है। तो ये बात बहुत स्पष्ट होनी चाहिए सभी को कि लकवा एक पर्टिकुलर अंग में होता है लेकिन उसका संबंध सीधे से दिमाग से है, न कि हाथ से या पैर से।
डॉक्टर रजनीश ने बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी दी है। ये बीमारी ज्यादातर प्रौढ़ आयु के बाद होती है लेकिन इसकी पृष्ठभूमि बहुत पहले से बनने लगती है। जानते हैं कि लकवा होता क्यों है।
इसमें कई फैक्टर्स हैं, कई कारक हैं। उन कई कारकों में से सबसे महत्वपूर्ण उम्र होती है। उम्र का बढ़ना लकवा की टेंडेंसी, लकवा के होने की प्रायिकता को बढ़ाता है। दूसरा मुद्दा हाइपरटेंशन, सामान्य भाषा में जिसे हम बीपी बोलते हैं। बीपी जितना अनकंट्रोल्ड होगा, जितना लंबे समय का रहेगा, उतना ज्यादा लकवा होने की गुंजाइश रहती है। तीसरा कारण शुगर, जितना ज्यादा शुगर अनकंट्रोल्ड होगा, जितना लंबे समय से होगा, उतना ज्यादा इसकी गुंजाइश ज्यादा होती है। इसके बाद ओबेसिटी, मोटापा, मोटापा अपने आप में बहुत सारे कॉम्प्लिकेशंस लाता है जिसमें एक लकवा होता है। इसके बाद हमारे लिपिड प्रोफाइल, जिसको हम लोग हाइपर लिपिडेमिया बोलते हैं, वसा की मात्रा का शरीर में ज्यादा होना, वो भी लकवा का एक कारक होता है, खासतौर से खून का संचार रोकने वाला लकवा। इसके बाद तो बहुत सारे कारण हैं जिसमें कि विटामिन B12 की कमी से हाइपर होमोसिस्टिनेमिया हम लोग बोलते हैं, उसके चलते ये होता है। खासतौर से शाकाहारियों में इसकी लकवा होने की प्रायिकता है, उसको ये बढ़ाता है। इन चीजों के अलावा सिडेंटरी मतलब शारीरिक श्रम न होना, वो भी एक कारक है लकवा। साथ में ये सामान्य चीजें जो भी मैं आपको बताया, ये सामान्य तौर पे हार्ट अटैक में भी कॉमन है, जितनी भी चीजें हमने भी बात की। इनके अलावा भी कुछ हेरिडिटरी फैक्टर्स बोल सकते हैं, पर वो चीजें ऐसी हैं जिनको हम टाल नहीं सकते। एक बहुत इंपॉर्टेंट है जो कि है तंबाकू। तंबाकू का सेवन चाहे वो किसी भी प्रकार में हो, चाहे वो सिगरेट हो, बीड़ी हो, या खैनी का चबाना हो, और साथ हमारे छत्तीसगढ़ में सबसे इम्पोर्टेंट गुड़ाखू, गुड़ाखू का घिसना इसकी प्रायिकता को बढ़ाता है, खासतौर से इस्चीमिक स्ट्रोक, खून का थक्का बनने वाला लकवा।
यानी लकवा ब्रेन से जुड़ी हुई बीमारी है, तो क्या दिमागी काम करने वालों को ये ज्यादा होती है?
बेसिकली मानसिक ज्यादा कार्य करने से लकवा नहीं होता, शारीरिक कार्य कम करने से लकवा होने की संभावना बढ़ती है, तो शारीरिक कार्य हमको ज्यादा करने चाहिए।
पक्षाघात के क्या क्या प्रकार हो सकते हैं, इस बारे में एक जानकारी।
अर्दित, सिर्फ चेहरे पर लकवे का असर होने को अर्दित कहते हैं, अर्थात फेशियल पैरालिसिस। एकांगघात, इसे मोनोप्लेजिया के नाम से जाना जाता है। इस रोग में मस्तिष्क के बाह्य भाग में विकृति होने से एक हाथ या एक पैर कड़ा हो जाता है और उसमें लकवा हो जाता है, या विकृति सुषुम्ना नाड़ी में भी हो सकती है। सर्वांगघात, इसे डाइप्लेजिया के नाम से जाना जाता है। इस रोग में लकवे का असर शरीर के दोनों भागों पर, यानी दोनों हाथ व पैरों, चेहरे और पूरे शरीर पर होता है। अधरांगघात, इस रोग में कमर से नीचे का भाग यानी दोनों पैर लकवाग्रस्त हो जाते हैं। यह रोग सुषुम्ना नाड़ी में विकृति आ जाने से होता है। यदि यह विकृति सुषुम्ना के ग्रीवा खंड में होती है तो दोनों हाथों को भी लकवा हो सकता है। बाल पक्षाघात, जब एक प्रकार का विशेष कृमि सुषुम्ना नाड़ी में प्रविष्ट होकर वहां खाने लगता है, तब सूक्ष्म नाड़ियां और मांसपेशियां आघात पाती हैं, जिसके कारण उनके अधीनस्थ शाखा क्रियाहीन हो जाती है। इस रोग का आक्रमण अचानक होता है और प्रायः 6-7 माह की आयु से लेकर 3-4 वर्ष की आयु के बीच बच्चों को होता है।
डॉक्टर साहब, क्षणिक लकवा या थोड़े समय के लिए होने वाला लकवा क्या होता है, हमारे श्रोताओं को इसकी जानकारी भी दीजिए।
उसको हम हमारी भाषा में TIA बोलते हैं, ट्रांजिएंट इश्केमिक अटैक। जैसा कि वर्ड से क्लियर है, ट्रांजिएंट का मतलब थोड़े समय के लिए। इसमें सेकंड्स के लिए इंसान को यह आभास होता है कि हाथ पैर में कमजोरी आई और वो चली गई। हमारी परिभाषा के अनुसार 24 घंटे तक में अगर वो पूरी तरह से ठीक हो जाता है तो उसको TIA बोलते हैं। तो TIA या क्षणिक लकवा कुछ समय के लिए होता है और अपने आप ठीक हो जाता है, लेकिन ये एक चेतावनी होती है कि भविष्य में आपको लकवा होने की गुंजाइश है। तो अगर आपको कभी भी शरीर में झुनझुनी हो एक हिस्से में, या आवाज लड़खड़ाए, या कमजोरी आए, तो तुरंत डॉक्टर से सलाह लेनी चाहिए, तुरंत अस्पताल पहुंचना चाहिए। ये नहीं सोचना चाहिए कि ये ठीक हो गया तो अब चला गया, इसको भूल जाया जाए। मैंने कई ऐसे मरीज देखे हैं जिनको कई बार ये अलार्मिंग साइंस आते हैं, कई बार TIA होता है, और वो इसको इग्नोर करते रहते हैं। उनके इस इग्नोर करने के चलते उनकी मौत हो जाती है, या उनको बहुत डेंस पैरालिसिस। डेंस पैरालिसिस का मतलब पूरी तरह से हाथ पैर काम करना बंद हो जाता है एक हिस्से का। हो सकता है कि अगर वो सही समय अस्पताल गए होते तो ये चीजें नहीं होती।
अक्सर हम सुनते हैं कि फला व्यक्ति के दाहिने हिस्से ने काम करना बंद कर दिया, या बायां भाग लकवाग्रस्त हो गया। क्या ये बीमारी शरीर के आधे भाग में ही होती है?
कभी भी दिमाग की नसें एक साथ तो पूरे ब्रेन में फटेंगी नहीं, हमेशा ये दिमाग के एक हिस्से की नस फटती है। तो हमारे शरीर में जितनी भी ब्लड की संचार होती है, खासतौर से दिमाग में, दो हिस्सों में बटी होती है, बायां हिस्सा और दाहिना हिस्सा। जब दिमाग के बाएं हिस्से की नसें फटती हैं या खून का थक्का जमता है, तो शरीर के दाएं हिस्से में कमजोरी आती है, और इसका जस्ट ऑपोजिट कि जब दाहिने हिस्से में होगा तो बाएं हिस्से में कमजोरी आएगी। यहाँ एक बहुत महत्वपूर्ण चीज है जो हमारे मरीजों को समझ में नहीं आती है, बड़े परेशान होते हैं कि आवाज क्यों चलेगी। सामान्य तौर पे आवाज तभी जाती है जब दिमाग के बाएं हिस्से में खून का संचार कम होता है। जो व्यक्ति दाहिने हाथ से काम करते हैं, सामान्य तौर पे 90% लोग दाहिने हाथ से ही काम करते हैं, तो उनके केस में बायां हिस्सा बहुत महत्वपूर्ण होता है, और अगर उनके बाएं हिस्से में थोड़ा भी खून निकला या खून का थक्का जमा, तो शरीर का दाहिना हिस्सा कमजोर होगा, साथ ही साथ आवाज भी जाएगी। उसको हमारी भाषा में अफेजिया बोलते हैं, आवाज का खो जाना।
तो डॉक्टर साहब, आवाज का खोना भी क्या लकवा का एक प्रकार है?
दरअसल ये लकवा का प्रकार नहीं है, ये लकवा का लक्षण है, ये लकवा है। यानी आप ऐसा समझे कि एक हाथ पैर का कमजोर होना जरूरी नहीं है कि एक हाथ पैर का ही कमजोर होना हो। दिमाग के अलग अलग हिस्सों से हमारे शरीर की एक्टिविटी कंट्रोल होती है। दिमाग के एक हिस्से से हाथ का चलना, एक हिस्से से पैर का चलना, एक हिस्से से बोलना, एक हिस्से से समझना, यहाँ तक कि जो हम चलते हैं तो हमारी मूवमेंट्स, हमारे बैलेंस को बनाना, दो पैरों पर हम जो चल रहे हैं उसके लिए भी एक हिस्सा इंपॉर्टेंट होता है, जिसको सेरिबेलम बोलते हैं। तो यदि सेरिबेलम हिस्से में दिमाग के छोटा मगज, सामान्य भाषा में उसको बोलता चलता है, अगर छोटा मगज में लकवा होगा तो मरीज के चलने फिरने में तकलीफ होगी, उसे चक्कर आएंगे, और ये बड़ा ही खतरनाक होता है क्योंकि ये दिमाग के उस हिस्से पर दबाव डालता है जिसमें हमारा जीवन होता है, जिसे ब्रेन स्टेम बोलते हैं, ब्रेन तना। ये छोटा मगज उस ब्रेन स्टेम पे दबाव डालता है और मरीज की अचानक मौत हो जाती है। इस पर्टिकुलर केसेस सामान्य तौर पे अनडायग्नोज चले जाते हैं क्योंकि सिटी स्कैन पे सामान्य तौर पे ये तुरंत दिखते नहीं है, और मरीज घर चला जाता है, दवाइयाँ उसको कुछ प्रिस्क्राइब कर दी जाती हैं चक्कर के लिए, बाद में जब सिटी किया जाता है या MRI तुरंत किया जाता है तो दिखता है।
लकवा शरीर के दाएं हाथ या पैर या चेहरे पर तो होता है, या शरीर के अन्य हिस्सों पर भी इसका प्रभाव होता है?
लकवा सिर्फ चेहरे पे भी हो सकता है, चेहरे पे हो सकता है, ना भी दिखे, सिर्फ और सिर्फ आपको निगलने में तकलीफ हो या बोलने में तकलीफ हो। जो ब्रेन स्टेम की अभी मैं बात कर रहा था उसमें तीन हिस्से होते हैं, मिड ब्रेन, पॉन्स और मिडुला। ये ऐसे हिस्से होते हैं जहाँ से दिमाग से नसें निकलती हैं, क्रैनियल नर्व्स बोलते हैं। अगर इस हिस्से में लकवा हुआ तो नर्व्स को प्रभावित करेगा, वो बहुत छोटे हिस्से को प्रभावित करेगा, और आपकी आवाज़ जा सकती है या आप निगलना आपका मुश्किल हो सकता है, डिस्पेजिया बोलते हैं उसको, आप निगल नहीं पाएंगे। तो लकवा कभी भी ये नहीं मानना चाहिए कि सिर्फ हाथ पैर की कमजोरी है, एक आंख आपकी खुल ना पाए वो भी लकवा हो सकता है, मरीज कुछ ऊट पटांग हरकतें करने लगे वो भी लकवा हो सकता है, यहाँ तक कि अगर आपको छोटा चक्कर आए वो भी लकवा हो सकता है, झुंझुनी, सामान्य झुंझुनी अगर आपको लगती है वो लकवा हो सकता है।
विभिन्न प्रकार के पक्षाघात के बारे में जानते हैं, चलिए हम अपने सहयोगी रेहाना के साथ।
दोनों पैरों का पक्षाघात, जिसे सख्ती संस्तंभ कहते हैं, ये व्यापक रोग है। यह किसी एक पैर में क्रमशः बढ़ती हुई कमजोरी के रूप में प्रारंभ होता है। प्रारंभिक अवस्था में ध्यान न देने और उपेक्षा करने पर दोनों पैरों में पूर्ण पक्षाघात हो सकता है। लैंड्रो का पक्षाघात तेजी से बढ़ने वाला पक्षाघात है, जिसमें ज्वर पांव से चढ़ता है और सारे शरीर को आक्रांत कर लेता है। यह विषाणुओं से होता है। बाल संस्तम या पोलियो सारी दुनिया में फैला हुआ कुख्यात रोग है। प्रायः बच्चों पर आक्रमण करने वाले एक विषाणु से ये फैलता है। यह विषाणु रोगियों से निकलकर स्वस्थ बच्चे में उसके मुख मार्ग से प्रविष्ट होता है। 2-3 दिनों तक ज्वर रहता है और इसके बाद शरीर के किसी या कई भागों में पक्षाघात प्रारंभ हो जाता है। निर्बल महिलाओं को प्रसव के तुरंत बाद पक्षाघात का आक्रमण होते प्रायः देखा गया है। चेहरे का पक्षाघात भी अत्यंत व्यापक रोग है और हर आयु में हो सकता है, जिसमें आधा चेहरा किसी दिन सवेरे या नहाने के बाद पक्षाघात पीड़ित पाया जाता है। भावुक, अस्थिर चित्त तथा किसी प्रकार के तनाव से पीड़ित अप्रौढ़ व्यक्तियों को हाथ, बांह या पैरों में हिस्टीरिया पक्षाघात हो जाता है, जैसे युद्ध के मोर्चे पर सैनिकों को पैर में और अतिशय श्रम करने वाली गृहिणी को हाथ में।
हमने शुरू में ही बात की कि दो तरह का होता है, एक खून की नस का फटना और दूसरा खून की नस में थक्का आना। खून का थक्का जमने वाले में ही हमने अभी बात की TIA की, ट्रांजिएंट इस्केमिक अटैक, वो एक तरह से खून का थक्का जमने की चेतावनी है। इसके बाद अगर हम जाते हैं तो एक लेगुनर स्ट्रोक होता है। लेगुनर स्ट्रोक का मतलब होता है, लेगुना मतलब छोटी छोटी थैली, एक बहुत ही छोटी ब्लड वेसल्स के हिस्से में जब खून का थक्का जमता है तो उसको लेगुनर स्ट्रोक बोलते हैं। सामान्य तौर पर ये अननोटिस्ड रहते हैं, ये पता नहीं चलते, सिम्टम्स मरीज को पता नहीं चलता है। बाद में जब मरीज कुछ कमजोरी लेके आता है तब ये डायग्नोस होता है कि इसको पहले भी लकवा हुआ है। तो ये दिमाग के ऐसे हिस्सों में होते हैं जहाँ से बहुत बड़ी चीजें कंट्रोल नहीं होती, या ऐसा कह लें आप कि वो चीजें बाकी हिस्सों से भी कंट्रोल होती हैं, इसलिए हमें पता नहीं चलता, इसलिए वो अननोटिस रह जाते हैं। और हाइपरटेंशन BP के मरीजों में ये बहुत ही सामान्य है, इसलिए BP के मरीजों को BP कंट्रोल के साथ साथ डॉक्टर से रेगुलर चेकअप करना चाहिए।
हार्ट अटैक यानी दिल का दौरा और ब्रेन अटैक यानी दिमाग के दौरे के कारण लकवा होना, इन दोनों के काफी लक्षण समान होते हैं, पर इन दोनों में मरीज या घर वाले अंतर कैसे कर सकते हैं, चलिए जानते हैं।
जो हार्ट अटैक होता है वो बहुत ही पेनफुल होता है। सामान्य तौर पे अधिकांश मरीज बहुत दर्द लेके आएंगे अस्पताल में, इतना ज्यादा दर्द होता है कि मरीज उसको सह नहीं पाता। कई केसेस में, कुछ केसेस में वो साइलेंट भी रहता है, लेकिन 80-90% केसेस में मरीज बहुत दर्द लेके आएगा, और सामान्य तौर पे ये सीने का या पेट का दर्द होता है। बाएं हाथ का भी इन्वॉल्वमेंट होता है, पर छाती के बाएं हिस्से में, पेट में और हाथ में, इसमें कहीं भी प्रेजेंटेशन हो सकता है। ये हार्ट अटैक की बात कर रहे हैं हम लोग। लेकिन ब्रेन अटैक में मरीज को दर्द होता ही नहीं, या तो मरीज सोता रहेगा और सोता रह जाता है और लकवा हो जाता है, और या मरीज अचानक कुछ काम करते करते गिर जाता है और लकवा हो जाता है। मरीज के रिश्तेदार ये सोचते हैं कि ये थोड़ी समय के लिए कुछ है, वेट कर लेते हैं, या मरीज को अगर लगता है थोड़ी कमजोरी हुई, हल्की कमजोरी है तो सोचता है वेट कर लेते हैं और वो अस्पताल नहीं पहुंचते। तुरंत अस्पताल न पहुंचने का एक कारण ये भी है कि इसमें दर्द नहीं होता। तो मेरी तरफ से श्रोताओं को कहना चाहूंगा कि इस बात को एकदम विशेष ध्यान दें कि हार्ट के अटैक में जो दवाइयां हैं वो कुछ दवाइयां ऐसी हैं जो 24 घंटे तक दी जा सकती हैं थक्का को कम करने वाली, लेकिन ब्रेन के अटैक में हम सिर्फ और सिर्फ 4.5 घंटे तक ही कुछ दवाइयां हैं जो दे सकते हैं, उसके बाद हम वो दवाइयां नहीं दे सकते। इसलिए लकवा के मरीजों में जैसे ही लक्षण दिखे तुरंत अस्पताल पहुंचना चाहिए।
यानी यदि लकवा के लक्षण दिखने के 4.5 घंटे के अंदर डॉक्टर के पास पेशेंट को पहुंचा दिया गया तो खून का थक्का हटाने वाली दवाएं लकवा के असर को खत्म कर सकती हैं और लकवा पूरी तरह से ठीक हो सकता है। चलिए जानते हैं लकवा के इलाज के संबंध में कुछ और जानकारियां।
जहां तक लकवा के इलाज की बात है तो फिर से ये डिपेंड करेगा कि लकवा कौन से तरह का है। क्या लकवा हेमरेजिक है, खून निकलने वाला है, या लकवा खून का थक्का जमने वाला है। अगर लकवा खून का थक्का जमने वाला है तो उसमें बहुत सारी चीजें हैं जो हम कर सकते हैं। सबसे महत्वपूर्ण चीज है थ्रोम्बोलिसिस। ये थ्रोम्बोलिसिस हम हार्ट अटैक में भी करते हैं, परंतु जो दुनिया भर में सभी देशों में जो गाइडलाइंस चल रही हैं, जो दवाइयां चल रही हैं, उसमें हमारे ब्रेन स्ट्रोक की दवाई सिर्फ और सिर्फ 4.5 घंटे तक दी जा सकती है, परंतु हार्ट अटैक की दवाइयां का स्पान जो है उन्हें वो लंबा होता है। इसीलिए लकवा के मरीज यदि जल्दी अस्पताल पहुंचते हैं और ये निश्चित हो जाता है कि ये खून का थक्का वाला लकवा है तो उनको कुछ विशेष दवाइयां दी जा सकती हैं जिनको थक्का हटाने की दवाई बोलते हैं। हमारी भाषा में इनको टिश्यू प्लाज्मिनोजन एक्टिवेटर बोलते हैं, टीपीए। ये टीपीए अगर दे दिया जाए समय से तो मरीज के पूरी तरह ठीक होने की संभावना बहुत ज्यादा होती है। इसके बाद जो सुविधाएं हैं वो सुविधाएं हमारे मध्यम वर्गीय शहरों में नहीं है। वो सुविधाएं ऐसी हैं कि उनमें जैसे एंजियोग्राफी आपने सुना होगा हार्ट के लिए करते हैं, नसों के भीतर जाके थक्के को निकाला जाता है। मेट्रोज में ये अवेलेबल है, बहुत ही कम स्थानों पे है और ये काफी खर्चीली है।
क्या होती है ये दिमाग की एंजियोप्लास्टी और ये कहाँ कहाँ उपलब्ध है, चलिए ये भी जानते हैं।
एंजियोग्राफी, सेरिब्रल एंजियोग्राफी का मतलब ये होता है कि दिमाग की नसों के भीतर जाके चीजों को देखना और क्लॉट को रिट्राइव कर, क्लॉट रिट्राइवल थेरेपी बोलते हैं, जिसमें थक्के को वहां से खींच के बाहर निकाला जा सकता है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण चीज होती है और मेरी जानकारी में अपने भारत देश में गिने चुने ही सेंटर्स पे अवेलेबल है। एम्स में, एम्स नई दिल्ली, पीजीआई चंडीगढ़ में ऐसे सेंटर्स पे अवेलेबल है।
लकवा के दो प्रकारों में से एक रुधिर में थक्का जमने के कारण रक्त प्रवाह अवरोध से होने वाले लकवा के इलाज के बारे में हमने जाना और अब दूसरा प्रकार दिमाग में रक्त वाहिनियों के फटने के कारण संबंधित अंग में होने वाले लकवा के इलाज के संदर्भ में जानते हैं।
इसके बाद जो इसमें इलाज होता है वो इलाज होता है एंटीप्लेटलेट। एंटीप्लेटलेट बेसिकली थक्का के बढ़ने को कम करता है, जो थक्का बन चुका उसके बढ़ने को कम करता है। यहाँ एक बात मैं आपको फिर से पीछे जाना चाहता हूँ कि जो हमने बोली कि हमने जो भी आपसे बात की कि थक्का को गलाने वाली दवाई, जो पहली दवाई हमने दी वो थक्का को गलाती है, इसलिए आप पूरी तरह से ठीक हो सकते हैं। लेकिन जो दूसरी दवाई है जिसको एंटीप्लेटलेट बोलते हैं वो थक्का को गला नहीं सकती, वो थक्का के बनने को रोकती है, बढ़ने को रोकती है। जो थक्का बन चुका वो बन चुका, उसको वो कम नहीं कर सकती। तो इसमें फायदा ये है कि अगर हमने उसको दवाई दी और थक्का बन रहा था तो थक्का रुक जाएगा, उतने पर रुक जाएगा और मरीज की जो पैरालिसिस, जो लकवा डेंस हो सकती थी जिसमें मरीज हाथ भी नहीं हिला सकता था, उसमें शायद मरीज इतना सामान्य हो जाए कि वो चलना फिरना शुरू कर सके कुछ महीनों में। ये दोनों ही चीजें जो हमने की ये जितनी जल्दी मरीज को मिल सके उतना ज्यादा हितकर है। तो समय का विशेष इसमें महत्व है इस्केमिक स्ट्रोक में। इसके बाद भी और सारी दवाइयां हैं जिसमें फिर दोबारा लकवा को रोकने के हिसाब से चीजें होती हैं।
ये सारी बातें तो हुई उस वक्त जब लकवे का मरीज समय पर यानी दौरा पड़ने के 4.5 घंटे के अंदर अस्पताल पहुंचता है, लेकिन अगर देर हो जाए तब क्या इलाज संभव है?
अगर मरीज देर से अस्पताल पहुंचता है तो हमें इस बात का ध्यान रखना है कि मरीज को सेकेंडरी चीजें नहीं हो। सेकेंडरी चीजें का मतलब लकवा के कारण होने वाले जो कॉम्प्लिकेशंस हैं उनसे हमें उसे बचाना है। लकवा से होने वाले कॉम्प्लिकेशंस ये होते हैं क्योंकि मरीज बिस्तर पे लगातार पड़ा रहता है, उसका हाथ पैर कमजोर रहता है, बोल नहीं पाता, निग्लेक्टेड जैसा पड़ा रहता है, वो आपको अपनी चीजें कन्वे नहीं कर सकता, बता नहीं सकता कि वो क्या चाहता है, उसे क्या तकलीफ है। इन स्थितियों में उस पर्टिकुलर हिस्से में ब्लिस्टर्स, सामान्य भाषा में बेड सोर्स, घाव होने की गुंजाइश रहती है। ये घाव सामान्य तौर पे पहले हफ्ते में ही बनने लगते हैं और काफी ज्यादा बनने लगते हैं। उसके बचाव के लिए मरीज को हमेशा बिस्तर पे अलट पलट करते रहना चाहिए, जो कि हम अस्पताल के ऊपर डिपेंडेंट हो, हमारे मरीज रिश्तेदार स्वतः इसको कर सकते हैं। दूसरी जो इसमें समस्या होती है इसको हम बोलते हैं डीवीटी, डीप वेन थ्रोम्बोसिस। इसका मतलब ये होता है कि पैरों की नसों में खासतौर से खून का थक्का जम जाता है, क्योंकि हम अगर मूवमेंट नहीं करेंगे, हमारे पैरों में मूवमेंट नहीं रहेगी, चलना नहीं होगा, तो खून अपने आप वहाँ पे थक्का बन सकता है। तो वो एक बहुत बड़ा कॉम्प्लिकेशन होता है जिसके चलते बहुत सारे मरीजों की मौत होती है। तो इस चीज़ के लिए विशेष ध्यान देने की बात ये होती है कि फिजियोथेरेपी की जाए और कुछ और डॉक्टर से संबंधित चीज़ें होती है जो डॉक्टर साहब को करनी चाहिए उसकी प्रोफाइलेक्सिस के लिए। मरीजों की तरफ से फिजियोथेरेपी सीखना चाहिए और उसको करना चाहिए। तीसरी जो समस्या होती है वो निमोनिया होती है। इस पे भी मरीजों का इन्वॉल्वमेंट कम है, मरीज के रिश्तेदारों का इन्वॉल्वमेंट कम है, ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट डॉक्टर्स का है। पेशाब की नली में खराबी आना, वहाँ पे इन्फेक्शंस का फैलना, ये सारे छोटे छोटे कॉम्प्लिकेशंस हैं। शुगर की मात्रा का अचानक बढ़ जाना या घट जाना, ये भी डॉक्टर के हिस्से के। पर एक बहुत छोटी सी चीज़ है जो मैं हमेशा मरीजों के रिश्तेदार को कहता हूँ कि आप जितना ज़्यादा अपने मरीज के साथ इन्वॉल्व होंगे उतना जल्दी से वो सुधार कर पाएगा और सामान्य जीवन जीने की तरफ बढ़ पाएगा। मैं हमेशा ये कहता हूँ कि आप मरीज को बैठाने की स्थिति में रखें, जितना समय दिन के समय जितना देर बैठा सके उतना अच्छा है। व्हील चेयर पर बैठा के रखें, टीवी के सामने या बच्चों के बीच बैठा के रखें, खुले में बैठा के रखें। इससे सबसे अच्छी बात यह होती है कि जो हमारे चेस्ट के, छाती के जो हमारे सिक्रीशंस होते हैं जो निमोनिया को करवाते हैं, उससे मरीज बच पाता है, उससे उसकी दर में कमी आती है। जब भी आप बैठे रहेंगे तो निमोनिया की गुंजाइश कम होगी, साथ में अगर आप बैठे हैं तो पेशाब की थैली में इन्फेक्शन की गुंजाइश कम होगी। इन चीज़ों का ख्याल मरीज को अस्पताल से डिस्चार्ज के बाद, अस्पताल से छुट्टी होने के बाद ख्याल रखना चाहिए कि मरीज को बैठा के रखा जाए, मरीज को किसी भी स्थिति में लेटा के भोजन न दिया जाए, लेटा के पानी न दिया जाए, और तब तक ये लेटा के पानी या भोजन न दिया जाए जब तक डॉक्टर उसको ये न सर्टिफाई कर दे कि अब ये सामान्य है, अब ये सब कुछ ले सकता है। जहाँ तक भोजन लेने की बात है, उसके पहले एक और चीज़ है वो जो महत्वपूर्ण है, राइज टूब फीडिंग। राइज टूब का मतलब ये होता है कि हम अपने मरीजों को, क्योंकि लकवा के मरीज लंबे समय तक बोल नहीं पाते और मुंह से ले नहीं पाते, उनको हम नाक की नली डालते हैं जो कि पेट तक जाती है। इससे बड़े आराम से मरीज के रिश्तेदार फीडिंग दे सकते हैं। ये आहार देना मरीज के रिश्तेदार को सीखना चाहिए और इसको करना चाहिए, और तब तक ये करना चाहिए जब तक डॉक्टर अगली विजिट में ये न बोले कि अब ये नली निकालनी है और मुंह से देना है। मेरे कई मरीज इस चलते मर चुके हैं और मुझे बड़ी तकलीफ होती है इस चीज़ को सुन के देख के कि गांव में जाने के बाद उन्हें जो नाक की नली है जो पेट तक जाती है वो किसी कारण से या तो उन्होंने खुद से निकाल दी या उनके किसी रिश्तेदार नातेदार या डॉक्टर्स ने जो रूरल पेरिफेरी में प्रैक्टिस करते हैं उन्होंने बोला कि निकाल दो और उन्हें निकाल के मुँह से खिलाना शुरू कर दिया। दरअसल इस बीमारी में सही असेसमेंट होना बहुत ज़रूरी है। मरीज कब इस लायक है कि वो मुंह से ले पाएगा, इस चीज़ को वही व्यक्ति असेस कर सकता है जो रोज़ इस तरह के मरीजों को देख रहा है। इसलिए मैं रिक्वेस्ट करूंगा अपने सारे मरीजों से और श्रोताओं से कि वो अपने डॉक्टर की सलाह माने और तब तक नाक से ही पिलाएं, नाक से ही भोजन दें जब तक उन्होंने बोला है। अगली विजिट में जब वो आए डॉक्टर के पास, डॉक्टर से सलाह लें, उस समय यदि डॉक्टर बोलता है, अपने सामने पिला के देखता है और बोलता है कि अब इनको आप मुंह से देना शुरू करिए, तभी मुंह से देना चाहिए। नहीं तो एक छोटी सी गलती से, एक छोटी सी कमी की वजह से, सहूलियत देखने की वजह से मरीज की मौत हो सकती है। इसके अलावा सामान्य चीज़ें हैं जिसमें कि फिजियोथेरेपी, मरीज को चलाने फिराने की कोशिश, ये सारी चीज़ें होती हैं, मोटिवेशन करना चाहिए।
कई मरीजों को घर वाले डॉक्टर की जगह कुछ ऐसे स्थानों पर ले जाते हैं जहाँ लकवा के रोगी ठीक कर दिए जाते हैं। कुछ विचित्र उपचार, कुछ सही गलत जड़ी बूटियाँ कितना ठीक कर पाती हैं ऐसे मरीज को।
मैं बहुत दुख के साथ आपको बताना चाहता हूँ कि ऐसे लोग सिर्फ और सिर्फ बेवकूफ़ बनाने का काम कर रहे हैं, क्योंकि पुराने लकवा को कोई ठीक नहीं कर सकता। दुनिया में ऐसी दवाई नहीं बनी है जो पुराने लकवा को ठीक कर सके। मुझे इसके बारे में अभी तक कहीं कुछ नहीं मिला है पढ़ने के लिए, और मेरे अस्पताल से कई बार मरीज इन सेंटर्स पे चले जाते हैं, और पता नहीं कहाँ कहाँ, मैं नाम नहीं लूँगा, मैंने सुना है कि वहाँ पे मरीजों की लंबी कतार लगी रहती है और वो कुछ कुछ दवाइयाँ देते हैं। उनमें से कुछ मरीज जब थक हार के ये देख लेते हैं कि हजारों हजारों की दवाइयाँ उन्होंने ले ली और कुछ असर नहीं हुआ, तो वो फिर दोबारा हमारे पास आते हैं और बताते हैं कि ये फला फला हमने दवाइयाँ खाई हैं। मैंने वो दवाइयाँ देखी हुई हैं और मुझे बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि ये सिर्फ और सिर्फ विटामिन की सामान्य गोलियाँ रहती हैं जिनका कोई असर नहीं होने वाला है। तो ये बात एकदम स्पष्ट तौर पर सबको समझना चाहिए कि पुराने लकवा का ठीक होना सिर्फ इस बात पर डिपेंड करेगा कि दिमाग के कितने बड़े हिस्से में खराबी आई है, और दूसरा मरीज को जो दवाइयाँ दी गई हैं वो कब दी जानी शुरू हुई, और तीसरा फिजियोथेरेपी या रिहैबिलिटेशन का पार्ट कितना चल रहा है।
छत्तीसगढ़ में लकवा कितने प्रतिशत लोगों को हो रहा है और पहले से आज की स्थिति में रोगियों की संख्या में बढ़ोतरी हुई है या इसके प्रतिशत को कम किया गया है?
मैंने बहुत बहुत ज़्यादा लकवा के केसेस देखे हैं। मैंने हॉस्पिटल्स बिलासपुर में न्यूरोलॉजी डिपार्टमेंट में जो जब काम किया उस समय अमूमन 2 से 3 केसेस रोज हमारे डिपार्टमेंट में लकवा के भर्ती होते थे। हालांकि ये सिर्फ बिलासपुर से नहीं थे, बिलासपुर के आसपास के एरिया से थे, पर सामान्य रूप में सभी के सभी छत्तीसगढ़ से ही हैं। तो आप ये अंदाजा लगा सकती हैं कि एक 200 से 300 बिस्तर के अस्पताल में तकरीबन 3 मरीज रोज लकवा के भर्ती होते हैं और सामान्य तौर पर 10 मरीज के आसपास का टोटल एडमिशन होता है। तो 10 मरीजों में 3 मरीज ये बहुत बड़ी मात्रा को बताता है, बहुत बड़ी तादाद को बताता है।
लकवा के रोगी को अलार्मिंग सिग्नल्स यानी कुछ चेतावनियां पहले से मिल जाती हैं। क्या सावधानियां रखी जाए कि मरीज लकवा की स्थिति तक पहुंच ही ना पाए?
सबसे पहले ब्लड प्रेशर का कंट्रोल होना चाहिए, बहुत ही प्रॉपर कंट्रोल होना चाहिए ब्लड प्रेशर का। शुगर का बहुत प्रॉपर कंट्रोल होना चाहिए। शारीरिक श्रम होना चाहिए, हमारी रूटीन में एक्सरसाइज वगैरह हो तो बहुत अच्छी बात है। भोजन की मात्रा बहुत प्रॉपर हो, ज़्यादा नहीं बहुत कम नहीं, वसा की मात्रा भोजन में कम हो, रेगुलर डॉक्टर से चेकअप लें और उन सब के ऊपर तंबाकू, इसी भी हाल में तंबाकू का सेवन न किया जाए।
और बस आज के कार्यक्रम में लकवा से संबंधित इतनी विस्तृत जानकारी के साथ हमें अनुमति दीजिए आज का ये कार्यक्रम खत्म करने की। डॉक्टर रजनीश पांडे ने हमें इतना वक्त दिया आपको इतनी सारी जानकारी देने के लिए, उनका बहुत बहुत धन्यवाद। और कबूल कीजिए अब आरोग्यवाणी के अगले अंक तक के लिए हमारा नमस्कार। आरोग्यवाणी कार्यक्रम में आज आपने सुनी लकवा रोग से जुड़ी हुई विस्तृत जानकारी प्रथम हॉस्पिटल बिलासपुर के डॉक्टर रजनीश पांडे से। सहयोगी स्वर था रेहाना तबस्सुम का और प्रस्तुति थी संज्ञा टंडन की।
आप सुन रहे हैं रेडियो अर्पण।